ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम और पश्चिम एशिया में इसके प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम हो चुका है अगले 60 दिनों के लिए, और इससे मध्य पूर्व एशिया में शांति की एक किरण दिखाई दे रही है। ये युद्ध विराम अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता की वजह से हुआ, और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार इस पर बात करने के लिए। अशोक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
रंजन जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे बहुत खुशी है आपसे बात करके, धन्यवाद।
सबसे पहले ये मध्य पूर्व की जो स्थिति है वो हम आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ लेबनान है, इसराइल है, फिर हिजबुल्ला है, और इस तरीके से आपस में कई देश युद्धरत हैं, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। और जो ये लेबनान और इसराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई है अगले 60 दिनों के लिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो इस पूरी चर्चा को आप यहाँ से शुरू करें, समझाते हुए कि दरअसल पश्चिम एशिया की अभी स्थिति क्या है और इस युद्ध विराम का कितना असर पड़ेगा आने वाले दिनों में, और ये कितना महत्वपूर्ण पहल है।
जी, एक बार फिर बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो हम विषय पर हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही पेचीदा विषय है। अगर हम इसकी जड़ में जाएं तो ये शुरुआत हुई इसको 1948 के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये निर्णय हुआ जो उस क्षेत्र में इसराइल को, जूस को अपना रहने का स्थान, अपना एक देश दिया जाएगा, जो कि 1918 में जो यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी थे एडवर्ड बाल्फर, उन्होंने बाल्फर डिक्लेरेशन एक दिया था जो युद्ध के बाद जूस को अपना स्थान एक दिया जाएगा, एक अपना देश दिया जाएगा। तो शुरुआत वहां से हुई, पर अगर जैसे आपने कहा है जो अभी हाल में जो हुआ है, हालात जो हुए हैं, उसकी शुरुआत में कहूंगा 2023 पिछले साल 7 अक्टूबर को हुई, जो जब गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी से बहुत सारे हमास के जो लड़ाकू थे, जो आतंकी थे, वो इसराइल में आ गए और उन्होंने कुछ ही घंटों में वहां पर करीब 1200 इसराइली नॉर्मल सिटीजन्स को, नेशनल्स को, युवक हैं, युवतियां हैं, बच्चे हैं, उनका कत्ले आम कर दिया वहां पर, और करीब 250 लोगों को वहां से अगवा करके ले गए, और उसमें भी बहुत महिलाएं भी थी, बहुत बच्चे भी थे। तो शुरुआत इसकी अभी जो हाल में हुआ है वो वहां से हुई है। हालांकि ये कहना गलत होगा जो ये जो इस युद्ध की शुरुआत यहाँ से है, युद्ध की शुरुआत जैसे मैंने बताया बहुत पहले हुई थी, और उसके बाद जो अरब के जो देश हैं उनके बीच में और इसराइल के बीच में बहुत बारी युद्ध हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है। 1956 में हुआ, 1967 में हुआ 6 दिन के लिए, 1973 में हुआ योम किपुर वॉर, लेबनन का आपने जिक्र किया था तो लेबनन में 2006 में हुआ हिजबुल्ला और इसराइल के विरुद्ध, और वहां पर एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1708 रेजोल्यूशन वहां पर की गई, जिसमें कुछ कंडीशंस थी, उन्हीं कंडीशंस को अभी भी लागू किया गया है इस अग्रीमेंट से, परंतु वो 2006 में अग्रीमेंट लागू नहीं हुई, और इसी वजह से हमने देखा जैसे गाजा पट्टी जो कि पश्चिम में है इसराइल के, वहां से हमास ने हमला किया, तो तब हिजबुल्ला जो लेबनन में है, जो उत्तर में है इसराइल के, उन्होंने भी वहां से इसराइल के ऊपर हमला बोल दिया। तो ये युद्ध करीब 13 महीने हो गए हैं, ये चल रहा है, और इसमें बहुत लोगों की मौत हुई है, करीब 3,500 से ऊपर लेबनन में जो लोग हैं, वहां के जो नेशनल सिटीजन्स हैं, उनकी मौत हुई है जो अटैक्स इसराइल ने किए हैं, और करीब 150 से ऊपर इसराइली लोगों की मौत हुई है, क्योंकि हिजबुल्ला ने भी बहुत वहां से रॉकेट और मिसाइल इसराइल के ऊपर दागे हैं। तो ये मैं कहूंगा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, जो ये एक रोशनी की किरण है, शांति की किरण है, जो कल सुबह से ये शांति विराम हुआ है 60 दिनों के लिए, और अभी तक वो चल रहा है, अभी तक कायम है, और यही उम्मीद की जा रही है जो ये 2 महीने तक चलेगा, और उसके बाद में भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा और इसका एक और असर होगा जो गाजा में हमास के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो युद्ध हो रहा है उस पर भी एक संधि होगी, सीज फायर होगा और वहां पर उस क्षेत्र में भी शांति आएगी।
हमास के साथ और ईरान के साथ इस युद्ध विराम का क्या असर पड़ेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे ये भी समझ लेते हैं अशोक साहब कि ये जो हिजबुल्ला के और इसराइल के बीच में संघर्ष विराम कहें, युद्ध विराम कहें, ये 60 दिनों के लिए हुआ है, एक तो इसकी शर्तें क्या हैं और दूसरी कि ये युद्ध विराम किस समझौते के तहत हुआ है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी 1701 ये डील जो हुई है, समझौता हुआ है, क्या ये उसी के तहत हुआ है?
ये उसके तहत नहीं हुआ है परंतु उसको मैं कहूंगा बिल्कुल मिरर करता है। थोड़ी सी इसमें जो शर्तें हैं वो थोड़ी सी बदली हुई है, वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी 1701, परंतु काफी हद तक वो मिलता जुलता है। उसमें मिलता जुलता जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो है रंजन जी, वो ऐसे हैं जो एक ब्लू लाइन है जो कि इसराइल और लेबनान को डिवाइड करती है, उनके बीच में जो रेखा है जो उनके उनको दोनों को सेपरेट करती है दोनों देशों को, उसको ब्लू लाइन कहा जाता है। उसके ऊपर उत्तर में एक नदी है, लितानी नदी
जी।
तो 1701 जो रेजोल्यूशन था उसमें ये निर्णय किया गया जो हिजबुल्ला के जो फोर्सेस हैं, क्योंकि वो भी तब करीब 37 दिन तक युद्ध चला था इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हिजबुल्ला के बीच में, तो तब कहा गया था जो हिजबुल्ला के फोर्सेस हैं वो लितानी नदी से उत्तर में रहेंगे, उसके नीचे नहीं आ पाएंगे, और ये वाला जो एरिया है जो ब्लू लाइन और लितानी रिवर के बीच में उसमें लेबनन के फोर्सेस रहेंगे, लेबनन आर्मी रहेगी और वो वहां पर शांति की स्थिति बनाए रखेगी। अभी जो बात हुई है वो ये है जो इसमें हिजबुल्ला के फोर्सेस तो वहां पर उसके लितानी नदी के उत्तरी छोर पर चले जाएंगे, उससे आगे रहेंगे, इस बीच में ब्लू लाइन और लितानी नदी में वो नहीं आएंगे, यहाँ पर लेबनीज फोर्सेस रहेंगे, यहाँ पर यूएन के फोर्सेस, यूनाइटेड नेशंस फोर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस इन लेबनन, वो रहेंगे, उसमें भारत का भी एक हिस्सा है, भारत की भी एक टुकड़ी है जो वहां पर पीस मेंटेन करती है, शांति को बनाए रखने के लिए वो भी वहां पर स्थित है। और उसके अलावा जो ये दो देश जो आपने बताए अभी रंजन जी शुरुआत में, जो जिनकी मध्यस्थता से ये यहाँ पर युद्ध विराम अभी जो हुआ है इसमें लेबनन और इसराइल में, वो है अमेरिका और फ्रांस, तो ये इनके भी जिम्मे सुपुर्द कर दिया गया है, जो हिजबुल्ला का जो फोर्स है वो यहाँ पर दक्षिण में नहीं आएगा लितानी नदी और ब्लू लाइन के बीच में, तो अब उनकी भी जिम्मेवारी बन जाती है जो वो यहाँ पर शांति कायम रखें। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, पहले केवल लेबनीज फोर्सेस, लेबनीज आर्मी इसमें शांति बनाए रखने के लिए उनको सुपुर्द किया गया था, परंतु ये कहा जाता है जो 2006 के बाद जो लेबनीज फोर्सेस हैं ना तो इनमें इतनी कैपेबिलिटी थी जो वो वहां पर शांति स्थापित कर सकें ब्लू लाइन और लितानी रिवर के बीच में, और ना ही उनकी मंशा थी, ना ही उनकी नियत थी, तो इसीलिए उस क्षेत्र में भी हिजबुल्ला के बहुत सारे हजारों की तादाद में वहां पर उनके लड़ाकू वहां पर आ गए, उन्होंने अपने बहुत बड़े आर्ममेंट्स के डिपोज वहां पर स्थापित कर लिए, चाहे वो रॉकेट हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, तो इसीलिए जो 1701 की जो कंडीशंस थी उनको बिल्कुल भी पूरा नहीं किया गया 2006 के बाद, परंतु अब क्योंकि अमेरिका और फ्रांस को भी ये जिम्मेवारी दी गई है तो ऐसा प्रतीत होता है जो वो इसको कायम करने में सफल होंगे।
हम बात कर रहे हैं लेबनान और इसराइल के बीच हुए युद्ध विराम के बारे में जिसकी मध्यस्थता की है अमेरिका और फ्रांस ने। अशोक साहब, अक्सर हम इस बात में भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये युद्ध विराम लेबनन और इसराइल के बीच कहना ज्यादा उचित होगा या इसराइल और हिजबुल्ला के बीच कहना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि लेबनन और हिजबुल्ला के बीच भी क्या संबंध है ये भी हमारी श्रोताओं की बेहतर समझ के लिए आप बताएं।
ये जो आपने सवाल किया है रंजन जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेबनन के अंदर हिजबुल्ला एक गुट है और इसको कहा जाता है जो ये ईरान का प्रॉक्सी गुट है, इसमें जो उन्होंने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है लेबनन साउथ में और बेरूत में भी उनके बहुत अड्डे वहां पर बने हुए हैं, जिससे कि वो इसराइल को एंगेज कर सकें, क्योंकि वो लेबनान ईरान से बहुत दूर है, तो अगर इसराइल ईरान के ऊपर कुछ उसकी नजर बुरी पड़ती है, उसके ऊपर हमला करना चाहता है, तो उसको रोकने के लिए हिजबुल्ला को वहां पर, ये एक शिया ग्रुप है जिसको बहुत अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस ने, एजेंसीज ने इसको एक आतंकी गुट बताया है, तो वो वहां पर रहकर इसराइल उनको जो सब सहायता मिलती है, चाहे उनकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो, चाहे उनको लड़ाई का जो माल है, जो वेपनरी है, एम्युनिशन है, वो सब उनको ईरान से मिलता है, परंतु फिर भी वो यहाँ पर लेबनन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक गुट है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्टर है, एजेंसी है, और लेबनन की पार्लियामेंट में भी उनके करीब 12-13 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इसीलिए इसको देखा जाए तो ये लेबनन के पूरे क्षेत्र में ये इसका अपना एक बहुत अहम रोल है हिजबुल्ला का, परंतु ये कहना ठीक नहीं होगा जो ये लेबनन और इसराइल के बीच में कोई संधि हुई है, क्योंकि लेबनन और इसराइल के बीच में कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, ये जो लड़ाई कर रहे हैं ये जो आतंकी गुट है हिजबुल्ला
जी,
यही इसराइल के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, और उन्होंने ये युद्ध शुरू किया, जैसे मैंने बताया, 8 अक्टूबर 2023 को, अगले दिन जब हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, हमास के साथ, हमास भी एक आतंकी गुट है, वो एक सुन्नी आतंकी गुट है जो कि जिसको सहायता मिलती है ईरान से, तो जब इसराइल ने हमास के ऊपर हमला कर दिया तो उसके बाद हिजबुल्ला ने भी हमास की सहायता करने के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर से, नॉर्दर्न बाउंड्री से इसराइल की, उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला किया, जिससे कि करीब 60-70 हजार इसराइली सिटीजन जो है, उत्तरी इसराइल का क्षेत्र था उसको छोड़कर उन्हें नीचे दक्षिण में आना पड़ गया।
तो अशोक साहब, ये पश्चिम एशिया में जो स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है, जिसका वैश्विक प्रभाव पड़ रहा है, इसके मूल में आपसे बातचीत करके ये समझ में आ रही है इस बात कि दरअसल ये लड़ाई मूल रूप से इसराइल और ईरान के बीच में है, और ये हिजबुल्ला और साथ में हमास, ये दोनों जो हैं ये ईरान के समर्थन से फल फूल रहे हैं ताकि इसराइल की बुरी नजर ईरान पर न पड़े, ऐसा कह सकते हैं
जी? ये आप जो कह रहे हैं ये एक हद तक ठीक है, परंतु जो इसकी शुरुआत है, क्योंकि ये केवल हिजबुल्ला और हमास नहीं है, एक और गुट भी है हूती जो कि यमन में है, और वो भी वहां से इसराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको भी सारा जो सहारा है, उनको भी जो सारा सपोर्ट मिलता है वो ईरान से ही मिलता है। तो ईरान ने कहा है, ईरान के नेताओं ने, जब वहां पर 1979 में वहां पर कलाब आया, रेवोल्यूशन आए
जी,
तो तब उन्होंने कहा जो हम इसराइल को इस दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे, और तब से ईरान इसराइल के विरुद्ध ये सब काम कर रहा है जो उसके ऊपर हमला किया जाए। और अभी ऐसा, मैं आखिर इसमें यही कहूंगा, जो अभी ये ऐसा लग रहा था जो 2020 में एक जब डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड्स शुरू किए थे, जिससे कि बहुत सारे जो देश हैं, यूएई है, बहरीन है, उन्होंने सबने अपने राजनयिक संबंध इसराइल के साथ बना लिए थे, और ऐसा प्रतीत होता था जो सबसे बड़ा देश जो है वहां पर सऊदी अरेबिया, वो भी शायद अपने संबंध इसराइल के साथ नॉर्मलाइज कर देगा। इसको रोकने के लिए हमास ने जो 7 अक्टूबर का हमला है, उन्होंने वो 7 अक्टूबर का हमला किया, और उसके बाद हम देख रहे हैं जो हाल वहां पर ऐसा हो गया। परंतु आपका कहना इस मायने में ठीक है, जो ईरान इसराइल का बहुत बड़ा दुश्मन है और इसराइल ईरान का बहुत बड़ा दुश्मन है, और वो एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। आखिरी बात जो हो रही है, ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, जिसके विरुद्ध इसराइल पूरी तरीके से है, क्योंकि वो समझता है अगर उसका ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो जाएगा तो वो इसराइल के विरुद्ध उसको डराएगा, धमकाएगा और उसके ऊपर अपना कब्जा करने का प्रयास करेगा।
अशोक साहब, चलते चलते एक अंतिम सवाल ये मन में उभर रहा है कि जो ये युद्ध विराम हुआ है लेबनन और इसराइल के बीच में, या कहें इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में, इसका मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में सीधा प्रभाव ईरान पर या ईरान के साथ रिश्तों में क्या पड़ने वाला है?
देखिए, ये जो युद्ध विराम हुआ है, इससे ये उम्मीद की जा सकती है जो अब गाजा में भी हमास के साथ भी एक सीज फायर हो जाएगा, और जो सारे वहां पर हॉस्टेजेस हैं वो वापस आ जाएंगे।
अशोक सज्जनहार साहब, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम और पश्चिम एशिया में इसके प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।